आज का जो हमारा सबक है उसमें आप देखेंगे कुराने पाक की हकानियत पे बहुत बात है। कुराने पाक को साबित किया गया है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, उसका कलाम है, और ये भी कि इसकी क्या सिफात है, ये भी हम देखेंगे आज के सबक में। और चूंकि कुराने पाक को जो मान लेगा, जो कुरान की हकानियत को, इसको सच समझ लेगा, इस पे यकीन कर लेगा, तो जो कुछ इसके अंदर है फिर उसको भी जाहिर है मानेगा, तो वो तो ईमान ले आएगा ना। असल बात यह है, अगर कुरान को सच्चा मान लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मतलब इंसान अपने शिर्क से भी बाज आ जाए और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मसला ही ये होता है कि जब लोग कुरान पाक को ही झुठला देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई अल्लाह ताला ने बात की ही नहीं। आज भी जो अहले किताब हैं ये कुरान पाक को अल्लाह ताला का कलाम नहीं समझते, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का ही कलाम समझते हैं, और इस वजह से वो इसके ऊपर ईमान नहीं लाते। और अल्लाह पर ईमान, कुरान पर ईमान, रसूल पर ईमान, आखिरत पर ईमान, सारे ईमानियात एक साथ जुड़े हुए, एक का इनकार है सबका ही इनकार हो गया। जो जिसने कहा कि कुरान को ही नहीं मैं मानता, तो इसने इनकार कर दिया जो कुछ कुरान पाक में, और कुरान पाक में जो सारा हक है उसका इनकार कर दिया, तौहीद का इनकार कर दिया। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस कुरान की हकानियत को बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कान हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और नहीं है ये कुरान के घड़ लिया जाए अल्लाह के सिवा। यानी ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने ना उतारा हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ से ही घड़ लिया। क्योंकि वो लोग कहते थे ना कि ये यहाँ से सीख के आए हैं, वहाँ से उससे सुन के आ गए हैं, तो इसकी हक्कानियत का अल्लाह ताला ने खुद सबूत दिया कि अल्लाह फरमाता है ये कोई मनगढ़ंत चीज़ है ही नहीं। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्यालात को तरतीब दे के और कह दिया ये कुरान। वलाकिन, लेकिन ये फिर क्या है? तस्दीक अल्लदी बैना यदई, ये तो तस्दीक करता है उनकी जो किताबें पहले गुजरी। तुम उन किताबों पर ही ईमान रखते हो, अगर तुम समझते हो कि तौरात सच्ची थी, इंजील सच्ची थी, तो फिर जो उनको भी सच्चा कह रहा है, जो भी उनके भी हक होने की दलील दे रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है? वह तफसील अल किताब ला रईब फीह मिन रब्बिल आलमीन, और तफसील है किताब की, और जो पहली किताबें हैं उनकी भी तफसील बयान करता है, उनमें जो चीज़ें सही थी उनको सही बताता है, जो चीज़ें उनमें नहीं शामिल हो गई उनको मनसूख करता है, उनको बताता है कि वो बाद में लोगों ने शामिल की, और शरीयत की तफसील करता है। ला रईब फी, देखिए ये कुरान जो है ना, जो जितनी किताबें गुजर गई, अब समझ लें कि वो एक्सपायर हो गई हैं। कोई इंसान एक्सपायर्ड चीज़ पसंद नहीं करता, वो उनके साथ थी, उन्हीं कौमों के या उन रसूलों के साथ उतरी थी, आज वो अगर अपनी ऑथेंटिक शक्ल में भी होती तब भी कुरान उन पे सुपरसीड करता। ठीक है, क्योंकि ये वो लेटेस्ट शरीयत लेकर आया जो कयामत तक के लिए है, और कुजा ये कि वो तो बिल्कुल ही चेंज कर दी गई। तो ये कुरान तफसील बयान करता है, एक्सप्लेन कर देता है सारी बात को, ये ऑथेंटिक वर्जन है सबका। ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ही है, और उसकी तरफ से ये किसी ने कुछ बनाया नहीं हुआ। देखिए कभी अगर इंसान के दिल में शैतान ऐसा ख्याल डाल दे कि क्या पता, पता नहीं इसमें कोई बात सही है कि नहीं, पता नहीं किसी ने ना मिला दी हो, तो कुरान खुद बताता है इस चीज़ की दलील है कि ये सच्चा है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये हक है, और हक का मैंने आपको एक मतलब बताया था, हक वो है जो अपने सबूत के लिए कोई खारजी, कोई एक्सटर्नल दलाइल या सबूत, या जो अपने आप को हक साबित करने के लिए कोई एक्सटर्नल चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को साबित करता है कि मैं सच्चा हूं। और ये कलाम खुद अपने आप को साबित करता है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। उस जमाने के बड़ा शायर था लबीब, उसकी शायरी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि काबा में लटकाई जाती थी, लेकिन जब वो सूरह कौसर उतरी तो उसने भी कहा कि नहीं, जब उसको ये सूरत सुनी तो उसने कहा कि नहीं, मेरा कलाम अब मैं गिव अप करता हूँ शायरी को, क्योंकि मैं अब इसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो जो पहचानने वाले हैं वो पहचान सकते हैं, ये अपना सबूत आप है जिसको कहते हैं। हाँ मगर ये अलग बात है कि हिदायत हर एक की नसीब में नहीं होती, वरना इसके हक होने में कोई शक नहीं है कि पता चलता है कि ये वाकई सच्चा कलाम है। अम यकूलून अफ्तरा, वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया क्या, या फिर या वो कहते हैं कि इसने खुद ही घड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कि आपकी तसनीफ है। कुल फातू भी सूरत इन मिथली, तो वो अच्छा अगर इन्होंने घड़ लिया तो तुम भी घड़ के ले आओ, तुम भी ले आओ ना कोई सूरत ऐसी। और कोशिश की थी एक शख्स ने जिसने नबुवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने ये कहा कि ये मेरा कुरान है, ये मेरे ऊपर उतरती है भाई। तो उसके अपने कबीले वाले भी हंस दिए, उन्होंने कहा ये किसी और को ना सुना दी, ये तो उस ये क्या एक से एक साथ काफिये मिलाए में ना उसके अंदर कोई अकल की बात ना समझ की बात। तो ये जो आज भी लोग कहते ना भाई बहुत फैलाओ इस बात को, वो यहूदियों ने कुरान बना लिया, वो वेबसाइट पे कुरान पढ़ा हुआ है, वो भाई इस कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता। वो जितना मर्जी अब उसको नाम रख लेने से थोड़ी वो कुरान बन जाएगा। अब कोई आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा कि मैं रसूल हूँ, मैं फलां रसूल हूँ, किसी भी रसूल का नाम ले ले, तो वो थोड़ी बन जाएगा। तो अब आप कहते जाएं देखो भाई पहचानो पहचानो झूठा एक रसूल आ गया, भाई जिसको सच्चाई की पहचान होगी ना वो फिर कभी इन बातों में नहीं आएगा। जिसने कुरान पढ़ा होगा ना वो तो एक लम्हे में समझ जाएगा कि ये झूठ है, ये घड़ी हुई बातें। तो इसलिए उन बातों को ना फैलाएं कि देखो उन्होंने बना लिया, देखो उन्होंने बना लिया, वो कुरान है ही नहीं, उसको कुरान कहीं ही नहीं। अगर उन्होंने उसका नाम भी रख दिया है तो वो कुरान थोड़ी कहलाएगा, नाम रखने से कुरान थोड़ी हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबियों को ऐसे मौजजे दिए गए कि उनकी वजह से लोग उन पर ईमान लाए, और मेरा ऐसा मौजजा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे ताबेदार बनिस्बत उनके भी बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि जिसने इसको समझ लिया, जो इस कुरान को जान गया ना, वो ईमान लाए बगैर नहीं रह सकता। और ये अलग बात है कि कोई जिद में है, हट धर्मी में है, ख्वाहिशात में पड़ा हुआ है और वो नहीं मानना चाहता, वरना ऐसा नहीं है कि उसके सामने हक नहीं खुलेगा, ये खुद बताएगा कि मैं सच्चा हूँ। और इसी वजह से आप देखें जो लोग हर किस्म की बायस एक तरफ रख के वो खुले जहन के साथ कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो वो ईमान ले आते हैं। आप कई गैर मुस्लिमों को जो पहले गैर मुस्लिम थे जो रिवर्टेड है, कई को आप सुने वो कहते हैं कि हम इस्लाम से पहले हमने किस चीज को देखा या क्या चीज हमें इस्लाम के करीब लेकर आई, कुरान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है अगर उन्होंने घर लिया तो तुम अपने आप को इतना जुबानदान समझते हो, तो अपने आप को इतना बड़ा बड़े बड़े शायर उनमें थे, बड़े अपने आप को फसी और बलीग समझते थे, तो तुम्हारी भी तो अरबी जुबान ही है, तुम भी ले आओ एक ऐसा। चैलेंज है और कयामत तक के लिए ये चैलेंज है, सिर्फ अरबों को नहीं था उस वक्त के, कयामत तक के लिए कोई भी ऐसा हो जो कि उठ के कहे कि हाँ मैं न कुरान के जैसा एक कलाम लेकर आया हूं। और फरमाया वदाउ मन इस्तताअतु मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और तुम अपने साथ मिला भी लो, उनको भी बुला लो अल्लाह के सिवा हर एक को, सब फरिश्ते जिन इंसान सारे भी मिल जाए ना, इस कुरान जैसी चीज़ नहीं बना के ला सकते। यहाँ पे एक सूरत का चैलेंज है और दूसरी जगह पे आयत का भी चैलेंज है कि एक आयत ही ले आओ, तुम एक आयत भी नहीं बना के ला सकते ऐसी। अब चूंकि हमें अरबी जुबान के ऊपर कमांड नहीं हासिल होती ना, तो हमें उतनी इसके जवाहर नजर नहीं आते, हम समझ नहीं पाते कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है और कितने इसके राज हैं जो आज तक लोग इसमें से मोती चुनते ही चले जा रहे हैं। बल कद्दबू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, बल्कि उन्होंने झुठलाया साथ उसके जो उन्होंने अहाता नहीं किया इसके इल्म का, यानी उन्होंने झुठलाया बगैर समझे इस कलाम को। ये कितना बड़ा जुल्म है ना, उस वक्त भी ऐसे और आज भी ऐसे। ला इल्म लोग जो जिन्होंने इसको ना अभी समझा ना इसको अभी सही तरह से इसको पाया, और वो उसको झुठलाने खड़े जाते कि हम तो मानते नहीं। अरबी का एक कहावत है कि इंसान उस चीज का दुश्मन होता है जिसको वो जानता नहीं, और वाकई जिस चीज से इंसान बेखबर होता है ना, बेइल्म होता है, उसकी मुखालफत शुरू कर देता है, कहता है हम नहीं मानते। उसके पास एक ही जवाब होता है, हम नहीं मानते। और आज भी जो दुनिया इनकार करती है ना, वो इसलिए करती है कि वो नहीं इसको समझे होते। नबी अलैहिस्सलाम की जात की भी जो मुखालफत है, या आपकी जो मजाक उड़ाने या ठट्टे करने या ये जो कार्टून बनाने, इसलिए कि वो नहीं जानते उनको। और कुरान का भी इनकार सबब यही है कि उन्होंने अहाता नहीं किया इस इल्म का। अहाता करना क्या होता है, पूरी तरह समझ लेना, पूरी तरह समझा ही नहीं है इसको और बस इनकार पे खड़े हो गए। वलम्मा यतीम तावीलू, और उन हालांकि उनके पास तो आई भी नहीं है इसकी अभी तावील, इन यानी तावील का मतलब क्या, हकीकत इसकी जो असल है वो तो इनको अभी पता ही नहीं है कि ये क्या बता रहा है, इसकी डेप्थ में तो उतरे ही नहीं है, और वो पहले ही इनकार करने बैठ गए। ना इन्होंने अहाता किया इसके इल्म का, ना इन्होंने इसकी असल को समझा, और तावील का मतलब एक नतीजा भी होता है, नहीं इसके अंजाम को भी नहीं देखा कि जो इसके ये क्या कलाम है और इसके बताए हुए अंजाम को जाना ही नहीं, तो फिर क्यों इसका इनकार करते हैं। ये ऐसे ही है ना जैसे आज लोग, कितने लोग उठ के खड़े हो गए, नहीं जी ये हदीस तो बाद में लिखी गई, अब हदीस का इनकार कर दिए। अगर आप उनसे पूछें ना, यकीन करें 100% मैं आपको ये बात कहती हूँ, इनकी अक्सरियत ये जानती ही नहीं है कि हदीस कैसे कंपाइल हुई, क्या हदीस की किताबें हैं, हदीस में है क्या, कभी उन्होंने हदीसों की किताबों को पढ़ा हो, कभी उन्होंने इल्मुर रिजाल हासिल किया हो, कभी उन्होंने ये तारीख जानी हो, कुछ भी नहीं मालूम। और बस एक बात कह देना, हम नहीं हदीस को मानते, ये तो गलत बात है। जब आपने किसी चीज को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं अभी, तो आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे आज गैर मुस्लिम भी यही काम कर रहे हैं कि बगैर समझे बगैर जाने कुरान पाक का इनकार। तो उनको इसका मतलब हमें ये दावत देनी चाहिए कि आओ कुरान को समझो, जब कुरान को समझ लो कि फिर कोई बात करना, फिर बताना। कदालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह तो उन्होंने भी झुठलाया था जो पहले थे, वो भी कोई बात को समझे बगैर, अभी उसका अल्लाह ताला की जो वही होती थी उसको समझे बगैर ही इनकार कर देते थे। ये इंसानों का एक यानी पुराना वतीरा है, तो फंजुर कैफ काना आक़िबतुल ज़ालिमीन, तो फिर देखो कैसा अंजाम हुआ जालिमों का। इसका मतलब है वो जालिम है जो इसकी तकजीब करता है, इसका मतलब है वो जालिम है जो इसको बगैर जाने इनकार कर रहा है, अहाता किए बगैर इसके इल्म का। और ये जिस को ये इसका इल्म हासिल हो जाए, उसके अंदर तो एक इनकलाब आ जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान को तो हम पहाड़ पे उतार देते तो वो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह की खशियत से ये ऐसा कलाम है, तो ये तो इंसान का दिल है। अगर वो दिल जरा भी उसके अंदर कोई वो सलीमुल फितरत है, जरा भी उस वो उसके अंदर कोई समझ बूझ है, तो वो दिल जरूर बदलता है। जितने लोग मुसलमान होते थे उस जमाने में भी, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए तबलीग करते थे, ये कुरान ही सुनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई और लेक्चर दिए जाते थे, बस कुरान की आयात उनके सामने रख दी जाती थी। वो कुरान को सुनते थे और उनके दिलों पे ऐसा असर करता था क्योंकि उनको समझ में भी आता था ये कुरान। तो जब वो दिल पे असर करता है, इंसान फिर माने बगैर रह नहीं सकता। एक हजरत दमाद अजदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, तो मक्का आए तो लोगों ने बताया कि वो तो दीवाने हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मैं तो झाड़ फूंक का माहिर हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ उनका इलाज करता हूँ ताकि उनको सेहत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वजह बयान की, तो आपने पहले कलमा शहादत पढ़ा, अल्लाह ताला की हमदो सना की, उसके बाद कुरान पाक का कुछ हिस्सा तिलावत फरमाया। तो दुमाद अजदी इतने ज्यादा मुतासिर हुए, फरमाया दोबारा आप पढ़े। फिर आपने पढ़ा, फिर फरमाया दोबारा पढ़े, फिर पढ़ा आपने। 3 दफा इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तिलावत की, तो फिर कहने लगे मैंने ऐसा कलाम पहले कभी नहीं सुना। मैंने काहिनों के कलाम सुने, शायरों के सुने, जादूगरों के सुने, मगर ये कलाम तो समंदर की तह तक पहुंचने वाला कलाम है। फिर वो ईमान ले आए और अपनी पूरी कौम की तरफ से उन्होंने बैत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। इसी तरह तुफैल दौसी जो थे, तो उन वो भी जब मक्का आए, लोगों ने कह दिया कि भाई वो ऐसे जादूगर हैं और अगर ये ना हो कि आपके ऊपर भी कुछ जादू हो जाए, तो ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो ये कहने लगे कि मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं कानों में रुई ठूंस लेता। तो कानों में रुई डाल ली कि कहीं ये ना हो कि मेरे कानों में उनकी कोई बात चली जाए। मुशरिकीन ने मक्का का ये तरीका था ना, लोगों को इस तरह बदगुमान करते थे, ऐसे भड़काते थे लोगों को। तो कहते हैं कुछ देर तो ऐसे किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतने बड़े कबीले का सरदार हूं और मैं कुरैश की बातों में आ गया और रुई ठूंस ली, आखिर मेरी भी तो कोई समझ है, कोई अक्ल है। ऐसे तो नहीं मुझे कोई कर सकता ना कि भाई कुछ बोल दिया और मैं उसकी वजह से दीवाना हो जाऊं। तो कहते हैं कि मैंने ना वो रुई निकाल दी और मैंने देखा हरम में कोई नमाज पढ़ रहा। उनके चंद जुमले सुने तो मुझे महसूस हुआ ये तो बड़ा अच्छा कलाम है। अब मुझे अपनी बदगुमानी के ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं क्यों बुरा गुमान कर रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, नमाज से फारिग हुए तो ये उनके पास गए और बताया कि मैं फलां फलां कबीले से हूँ और मैं आपके बारे में बड़ा बदगुमान हो गया था, लेकिन मैंने आपके ये चंद कलिमात सुने, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो मुझे इनकी तफसील बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास तिलावत फरमाई, सूरह फलक तिलावत फरमाई और उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। तो आपको पता है हज़रत उमर के बारे में भी तो यही आता है ना, कहते हैं यही उनके इस्लाम लाने का असल में सबब बना था। वो तो जो उन्होंने अपनी बहन से सुना वो तो बाद में सुना था ना, लेकिन उससे पहले हरम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे, तो ये खड़े होकर सुन रहे थे। कुरान पाक का असर इतना दिल पे हुआ, अरे मैं हैरान हो रहा था कि कैसा कलाम है ये, इतना पूरा असर कलाम। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया ये आदमी ज़रूर कोई शायर है, इसीलिए इतनी खूबसूरत ये कलाम उनकी ज़ुबान मुबारक से अदा हो रहा। तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम व मा हुआ भी कौली शायर कलील अम्मा तुमिनो। सूरह हाक्का की आयत है ना कि ये रसूल का, रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का नहीं है, लेकिन तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। तो मैंने अपने दिल में सोचा, अगर ये शायर नहीं जरूर काहिन है, इसको तो पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसी वक्त आपकी जुबान मुबारक से अल्फाज आता हुए, वला भी कौली काहिन खलील अम्मा तदक्करूं, ये किसी काहिन का भी कौल नहीं है, नहीं तुम कम ही सोचते हो। तंजील उम्मे रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज जो अदा हुए हैं, तो उनसे इनके दिल के अंदर इस्लाम का जो सबसे पहला तासुर दिल पे जो नक्श हुआ है ना, वो इस कुरान को सुन के इस तरह से हुआ था। और बेशुमार बेशुमार और भी सहाबा के जो इस्लाम लाने की दास्तानी है, उनके पीछे आप देखिए कुरान है जिसने असर किया। कुरान असर करता है, इसका अपना एक इफेक्ट होता है दिल के ऊपर। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये हक है, ये अपने आप को खुद मनवाएगा, ये अपना खुद सबूत है। और यही वजह है कि हम लोगों के कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ना हम कोई फिरके की बात करेंगे, ना हम को और बात करेंगे, आप कुरान से जुड़े, कुरान की तरफ आए ना। हम आपको ये कहेंगे आप हिजाब लेना शुरू कर दें, आप ये हराम छोड़ दें, आप ऐसे कर दें, कुछ भी नहीं कहना आपको, बस इस कलाम के साथ लोगों को जोड़ना। ना आपको उनको शर्म दिलाने की जरूरत है, अच्छा तुम अब ये करती हो और देखो तुम कुरान पढ़ रही हो, कुरान उसको खुद ही चेंज कर देगा। ये वो कलाम है जिसने पत्थर जैसे दिलों को तोड़ दिया। तो अगर कोई सलीमुल फितरत है तो ये खुद अपना काम करता है, ऐसे ही नहीं। वो इसको जादू कहते थे, क्यों कहते थे जादू, जादू ही क्यों कहा उन्होंने, खुद ही सोचा आपने कभी? वाकई ये ऐसा असर रखता है कि जिंदगियां बदल जाती हैं। तो वो पागल हो रहे थे कि लोगों को हो क्या जाता है, कैसे चेंज हो जाते हैं इतने, क्या आ जाता है इनके अंदर? तो शायद इनको किसी ने जादू ही कर दी। नहीं, ये जादू नहीं, ये तो वो चीज है जो जिंदगियों को बदल देने वाली। तो इस कलाम के अंदर बड़ी ताकत है और बड़ी कशिश है। जब लोगों को सुनाया गया, जिन लोगों को ये कुरान पाक समझ भी नहीं आता था, एक तरफ उनको कुरान से सुनाया गया, फिर उसके बाद वैसे ही अरबी जुबान में कुछ ऐसे ही बोलने लगे वो सुनाए, उन्होंने कहा नहीं इसका असर है। और आप किसी खूबसूरत कारी की आवाज में कुरान पाक को सुनते हैं, तो चाहे जिसको समझ नहीं भी आता हो ना, वो भी ऐसे दिल करता है कि आप सुनते रहे। वमिनहुम मन युमिनु बिही, और इनमें से कोई तो है जो इस पे ईमान लाता है। वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और कोई ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। और ये आज के लिए भी है और अगले जमाने तक के लिए। देखें सहाबा में भी कई ईमान लेकर आए, हजरत उमर हालांकि बड़े सख्त समझे जाते थे, लेकिन देखें जब ईमान ले आए तो कैसे मोम हो गए। और कई बदनसीब ऐसे हैं कि जो इसको भी ना मानेंगे, अबू जहल जैसे, अबू लहब जैसे, उन्होंने नहीं मान के दिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इस कलाम मुबारक को सुना। तो रहती दुनिया तक ऐसे लोग होंगे जो अगर कोई हठधर्मी में जिद में पड़ जाए और कहे कि नहीं मैंने मान के ही नहीं देना, तो वो कहेगा सूरज निकला हो, कहे सूरज है ही नहीं। अब क्या ऐसे इंसान का कर सकते हैं, जो ढीठ हो गया हो, जो जिद्दी हो गया हो, जो कहे कि मैं ना मानू, उसके तो कुछ नहीं इलाज है। हाँ, मगर उनका दिल जरूर गवाही देता है कि ये सच है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने वाले हैं कि हम इस पे ईमान रखते हैं, फिर भी अगर इससे दूर रहें तो कितनी बदनसीबी है, कितनी अफसोस है कि जिस कलाम को सुन के वो जो मुशरिक थे, जो जाहिल थे, जो काफिर थे, वो बड़े बड़े मर्तबों वाले हो गए, तो हम तो पैदाइशी मुसलमान, पैदा ही मुसलमानों के घरों में हुए। हमने आंख खोली तो इस्लाम को ही देखा और फिर भी हम इससे दूर रहे, तो कितनी बदनसीबी की बात है कि दूसरे आके बाहर से इसको ले लें और ऊंचे मर्तबे पा लें और इसके लिए कुर्बानियां दे के और फिर इसको पाए, और हमें यानी सब चीज हमारी फेवर में होते हुए और घर बैठे मिलते हुए भी हमें के कोई परवाह ही ना हो। तो हमने फिर इस कुरान का हक तो ना अदा किया अगर हमारे ये रवैये हैं। तो अल्लाह ताला व रब्बू का आलम बिल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को खूब जानता है। यहाँ पे फसाद करने वाले कौन है? वो जो नहीं ईमान लाते, पीछे देखिए ना बात किसकी हो रही है, जो नहीं ईमान लाते वो फसादी हैं। हम कहें हम तो नहीं फसादी, लेकिन जो इसके ऊपर ईमान नहीं लाया उसकी जिंदगी सिवाय फसाद की और कुछ नहीं, वो फसाद ही मचाएगा। वह इन कदबू को, और अगर उन्होंने झुटलाया आपको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने का मतलब क्या कि आपकी रिसालत को झुटलाया। आपकी रिसालत किस चीज से बनती है? हाँ? वही से ना, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके अंदर पहले भी थे, तो वो तो आपको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि आप बड़ी उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी थे, सादिक और अमीन कहते थे, बड़े उनके फैसले को मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद का जो फैसला किया था तो इस्लाम से पहले की बात है, बड़े इन्होंने इज्जत से साथ आपका फैसला सुना। आपको देखते ही उन्होंने सोचा कि अच्छा ये आदमी सबसे पहले आ रहा है ना, तो ये तो कोई अच्छी बात करेगा, तो बड़ी इज्जत थी। लेकिन झूठलाना किस चीज का था? आपकी पर्सनैलिटी को नहीं, आपकी रिसालत को। और आप रसूल, क्या चीज आपको रसूल बनाती है? अल्लाह ताला की भेजी हुई वही ने आपको रसूल बनाया ना। तो इस आपको रिसालत को झुटलाना का मतलब है वही को झुटला देना। तो अगर आपको झुटलाते रहते हैं, और ये अभी कोई इनिशियल बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम सुनाया और उन्होंने झुटला दिया, तो उसकी बात नहीं हो रही, ये लास्ट स्टेज की बात हो रही है। आप बताते रहे, आप दलायल देते रहे, आपने मोजा दिखाया, आपने उनको तरह तरह से कायल करने की कोशिश की, आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन वो नहीं माने, वो फिर भी झुटलाते रहे, और कोई अब ऐसी वजह नहीं रह गई झुटलाने की सिवाय इसके कि उनकी जिद है कि हमने नहीं माना। फकुल, तो आप फिर कह दें, अब इस स्टेज पे आप आके कह दें, जब आपने अपनी पूरी एफर्ट लगा लिए, पूरी मेहनत लगा लिए, जरा भी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गिव अप नहीं किया, तब आप कहेंगे ली अमली वलकुम अमलकुम, मेरे लिए मेरा अमल है, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरी हूं ना मिम्मा आमलो ना बरी हूं मिम्मा तामलो, मैं उससे बरी हूं जो तुम शिर्क करते हो, कुफर करते हो, गलत काम करते हो, और तुम उससे बरी हो जिस जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, तुम्हारी मेरे से पूछो नहीं है ना मेरी तुमसे पूछो नहीं। ये तब होगा कि जिस वक्त आप सब कर चुके हैं, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश नहीं की है तो जालिम उस दिन खड़े होकर कह सकते हैं कि अल्लाह इन्होंने नहीं हमें बताया था, इनके पास तो तेरा कलाम था, या अल्लाह इसने तो मुझे कभी नहीं बोला था, इसने तो नहीं मुझे राह दिखाई थी, ठीक है। अब ये एक जवाब है उस माशरे के लिए जो मान के ना देने वाला है, या जो लोग खुद भी नहीं कायम है और दूसरों को भी नहीं कायम रहने देते, जो दूसरों के भी पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको कहे नहीं आपसे मेरी पूछ नहीं होनी, आप अपना काम करें मैं अपना काम करूंगी, ना मुझसे आपकी पूछो नहीं, ना आपको मुझसे मेरी पूछो नहीं। लेकिन ये बाज लोग समझते हैं हमने बस एक दफा ही बताया तो उसके बाद हम ये कहने लगे, नहीं, ठीक है, और ना ये करना है कि अच्छा अब वो तो मान नहीं रहे, वो तो मानेंगे ही नहीं, तो हम ही झुक जाते हैं, हम यूनिटी ले आते हैं, हम देखे ना फिर ऐसे तो सही नहीं है, हम भी आपको मान गए, आपका भी अच्छा है और हमारा भी अच्छा है, ना हम आपको गलत कहते ना आप हमें गलत कहें, नहीं, ये अप्रोच तो मोमिन की कभी हो ही नहीं सकती। देखिए अगर वो भी अच्छे हैं और उनका भी सारा जो वो अकीदा रखते हैं वो भी अच्छा और हमारा भी अच्छा, तो वो आप क्या यूनिक चीज लेकर आए हैं? आप क्या तौहीद के प्रचार करते फिर रहे हैं फिर? हाँ ठीक है, शिर्क वाले दूसरे शिर्क वालों को ये कहें तो समझ आती है कि भाई मैं इसको शरीक ठहराता हूँ, कोई दूसरी चीज को शरीक ठहरा रहा, कोई तीसरी को, तो वो कहें भाई हमारे एक जैसे ही हैं, आप भी हमें माने, हम आपको मानते हैं, हम सारे ही ठीक है, सारे ही शिर्क में है ना। लेकिन कैसे हो सकता है कि तौहीद तो बिल्कुल ऑपोजिट है शिर्क के, कैसे हो सकता है आप ये कहें तुम भी सही हो हम भी सही हैं? नहीं, आपको ये ऐलान करना होगा और आपको ये अपने आप को उससे अलग करके दिखाना होगा कि नहीं, मेरा अमल मेरे साथ है, तुम्हारा तुम्हारे साथ है, हम हमारे रास्ते यानी अलग हैं, हमारे रास्ते एक नहीं हो सकते। हमने आज क्या सोच लिया, मैं भी अच्छी वो भी अच्छे हैं, नहीं, किसी को गलत नहीं आपने कहना है ना, वो भी ठीक है अपनी तरफ से तो वो भी सही कर रहे हैं ना, तो आप ना किसी को गलत कहे, कैसे नहीं गलत कहे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे नहीं तो आपका सही कैसे है फिर? अगर देखे ना मैं भी सही आप भी सही, तो फिर मसला क्या है? वो कहते हैं ना मसलों से बचने के लिए तो दीन हमें अलग अलग करता है, तो आप मसलों से बचने के लिए आप ऐसा करें कि किसी को भी ना कुछ कहें, ठीक है? तो आपने बताना है ये है जो लाइन, इसके उस तरफ तुम और इस तरफ हम, तभी बात होगी कि ये हक है और ये बातिल है। देखिए 1 + 1 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता ना। आप कहें नहीं 3 भी सही है और 2 भी सही, तो नहीं हो सकता, एक ही चीज सही होगी, या तो तौहीद सही है या शिर्क सही है। जिस दिन आपने कह दिया ना कि शिर्क भी ठीक है कोई मसला नहीं, तो आपने तो वैसे ही तौहीद का इनकार कर दिया। आपको एक राह लेनी होगी, या तो तौहीद का रास्ता है या शिर्क का रास्ता। आज मुसलमान अपने आप को असिमिलेट करने के लिए, उनके साथ प्यारे बनने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने लगे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजों को मानने लगे हैं जो कि हमारा मानने का मतलब ये है कि हम अपनी चीज को मशकूक कर दें कि जो हम कर रहे हैं वो ही डाउटफुल हो गया, आपने उसको डाउटफुल कर दिया, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट कहता है। अपने आप के दीन पे मजबूत रहना है और उसके बाद निगेट करना है आपका, तो कलमा ही ला से शुरू होता है, ला इलाहा से, इल्ला तो बाद में आता है, लेकिन आपने जब ला इलाहा पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आगे क्या है? जब आपने उनकी नफी की तो फिर आपने कहा कि वो निगेट करें पहले उसको कि वो गलत है, कोई इलाह है ही नहीं कोई और, फिर आप कहते हैं इल्लल्लाह। तो तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रही हूं, ये नहीं कि तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रही हूं, हम दोनों ही अच्छे हैं, ये नहीं, ठीक है? अमिन हम मैस तभी हूं ना इलेक, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कान लगाते हैं आपकी तरफ। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आते भी थे, बड़े को आके सुनते भी थे, कान लगा के सुन भी रहे हैं, तो लेकिन देखें जो कोई गौर से सुन रहा हो जरूरी नहीं है कि वो हिदायत लेने ही आया हो, लोगों की बहुत सी किस्में हैं ना, जरूरी नहीं वो हिदायत लेने ही आया, वो किसी और एजेंडे के साथ भी आ सकता है। तो अब अगर ये बताइए, अगर कोई बहरा है और वो बड़ी गौर से आपकी तरफ मुतवज्जे होके ऐसे लग रहा है सुन रहा है, तो क्या उसको कुछ सुन रहा होगा? चाहे वो आपको कितना ही नजर आ रहा है कि कितनी तवज्जो से ये मेरी पत्नी बात सुन रहा है, लेकिन वो तो बहरा है, बाद में पता चलता है। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा वलो कानू ला याकिलून, क्या आप बहरों को सुनवा सकते हैं और अगर वो अक्ल भी ना रखते हो? आप यानी अगर वो चलो बहरा है कोई और उसके बाद आप उसको कुछ समझाना चाहें तो कोई शायद इशारे से आप उसको समझा दें, लेकिन अगर उसको अकल भी नहीं है तो उसको कैसे समझा भी सकते हैं? तो ये ना सिर्फ बहरे हैं बल्कि अकल भी नहीं रखते हैं। सुनने की तो है ही नहीं सलाहियत, समझने की भी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ऐसे हठ धर्म लोगों की यही मिसाल है। समझ आई बात, कि ना जिनके पास समात है और ना जिनके पास कोई अकल है, तो ऐ नबी आप उनको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे सुनवा सकते हैं। ये देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिर्स थी लोगों के लिए, जो उन तक बात पहुंचाने की तड़प थी, लेकिन जिसने अपना दिमाग ही बंद कर दिया क्या करेंगे उसका। तो दाई जो होता है ना, जब वो परेशान होने लगता है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर भी लोग ऐसे रिएक्शंस करते थे, तो हमारे और आपके जैसे लोग अगर कुछ बात बताते हैं और कोई नहीं सुनता नहीं मानता, तो उस पर डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वमन मिन हो मई यंजरू इलैक, और उनमें से कोई ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, इतनी गौर से देख रहे हैं जैसे लगता है कि ये पता नहीं कितना सुन रहे हैं ना, फिर क्या पता चलता है, फिर किसी ने बताया ये तो अंधा है, आपने समझा मेरी बात, बड़ी ही गौर से सुन रहा है, मेरी तरफ ऐसे ही करके देख रहा था, तो पता चला वो तो अंधा है। अफ अंत तहदिल उमिया, क्या फिर तू राह दिखाएगा अंधों को, बोला क्या ना ला युबसिरून, अगरचे हो ना हो वो देखते ना, उनकी बसारत भी नहीं है बसीरत भी नहीं है, आंखें रखने के बावजूद देखते ही नहीं, ऐसे अंधे हैं ये। अब थे तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी अंधे, मगर दिल की आंखें अंधी नहीं थी ना। तो असल में होता ये है कि इंसान की ये जो जिस्म की आंखें ना, ये अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। कुरान कहता है आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। लोग अच्छे भले देखते हैं, अल्लाह की निशानियां भी देख रहे हैं, कुरान का भी कहीं सुनाई दे देता है, उनके कानों में चला जाता है, लेकिन दिल ऐसे अंधे हैं कि वो इस तरफ आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मैं तुम्हें इस हाल में ना देखूं कि तुम किसी जमात के पास जाओ और वो अपने किसी और काम में मशगूल हो, और इस हालत में तुम अपने वाज उनको सुनाना शुरू कर दो, बल्कि तुम्हें चाहिए कि खामोश रहो और जब वो तुमसे फरमाइश करें तो उनको सुनाओ, और वो उसको ख्वाहिश से सुने, उसको खुशी के साथ सुने, यानी उनको चाहत हो तो फिर उनको सुनवा दो। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसी मजलिसें होती हैं कि आप कहते हैं बस इनको सुनवाए जाओ सुनवाए जाओ, पता नहीं मैं यहाँ बैठ गए तो ज़बरदस्ती इनको सुनवा जाओ, हालांकि वो ज़रा भी इसके अंदर वो नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, और बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि किस वक्त ये ख़त्म करें और हमारी जान छूटे, हमें इस जो अजियत है इससे हम निकलें। और वाकई ऐसा होता है, बस दफ़ा लोग दर्स पे बुला लेते हैं, वो ऐसी मजलिस होती है जिसमें कोई शादी ब्याह है या कोई ऐसी चीज़ है, वाकई ऐसी लगता है कि ये बहरे हैं या अंधे हैं, ना इनको कुछ सुन रहा है, ना कोई जैसे दिल में बात उतर रही है, ना कोई अकल है, ना कोई समझ है। तो इसी वजह से इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मत सुनाओ, यहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें जो नहीं सुनना चाहते वहाँ पे मत सुनाओ, बल्कि तुम्हें चाहिए खामोश रहो, जब वो तुमसे फरमाइश करें तो उनको सुनाओ। यानी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि इस अल्लाह के कलाम को नापसंद करेंगे, तो अल्लाह के कलाम की एक इज्जत है, यहाँ पे लोग नापसंद कर रहे हैं उनको मत कहें। वो कहते हैं ज़बरदस्ती पता नहीं इनको सुना देंगे तो आज क्या हमारी बरकतें हो जाएंगी और ये हो जाएगा, हालांकि ये बेअदबी है। तो सुन के जो अनसुनी करना है ना, ये जो जिनका बता के क्या आप सुनवा सकते हैं बहरों को, ये सुन के अनसुनी करना है, कानों में तो आवाज़ जा रही है लेकिन सुनी अनसुनी। ऐसे ही बिल्कुल आप देखें ना, जानवर भी तो सुनते हैं लेकिन क्या वो सुन के समझते हैं कोई बात, कानों में तो उनकी भी आवाज़ जा रही है, उनकी भी तो समात है, लेकिन क्या वो कुछ समझते हैं, नहीं समझ रहे ना। इसी तरह इंसानों का भी हाल हो जाता है, कि आवाज उनके कानों में जाती है, टकराती है उनके कानों के पर्दों से, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे कि बिल्कुल, ये बाज दफा तो मुसलमानों का ये हाल है, तो दूसरों का तो आप छोड़ ही दें। तो जो सुन के भी अनसुनी करना है ना, वो भी यही है कि इंसान बहरा हो गया, वो भी बहरे हैं अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह ताला ऐसे बहरेपन और ऐसे अंधेपन से बचाए, और दिलों के अंधे होने से अल्लाह ताला बचा ले। क्योंकि जब इंसान के अंदर ही बात नहीं जाएगी, जब उसके दिल में उतरेगी ही नहीं और उसको समझ ही नहीं आएगी, तो वो क्या अमल करेगा? और वो क्या ईमान लाएगा?